अध्याय 20 हानि जो लाभ है। ये अध्याय लूका 12 आयत 13 से 21 पर आधारित है। यीशु मसीह दूसरों को खुश करना सिखा रहे थे। इसके अलावा उनके शिष्य उनके बारे में इकट्ठा हुए थे। वो उन दृश्यों के बारे में बात कर रहे थे जिनमें वे जल्द ही एक भाग का अभिनय करने वाले थे। विदेश में उन सच्चाइयों को प्रकाशित करने के लिए थे जो उन्होंने उनके लिए प्रतिबद्ध की थी, और उन्हें इस दुनिया के शासकों के साथ संघर्ष में खरीदा जाएगा। उनकी खातिर उन्हें अदालतों में और मजिस्ट्रेट और राजाओं से पहले बुलाया जाएगा। उन्होंने उन्हें ज्ञान का आश्वासन दिया था जो किसी को नहीं मिला, अपने स्वयं के शब्द जो भीड़ के दिलों को स्थानांतरित कर देते हैं और उनकी पत्नी के विरोध के भ्रम में लाते हैं, जो कि उनके अनुयायियों से वादा किया था, उस आत्मा को विचलित करने की शक्ति का गवाह था। लेकिन कई ऐसे भी थे जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्वर्ग की कृपा चाहते थे। उन्होंने सत्य को स्पष्ट प्रकाश में स्थापित करने में मसीह की अद्भुत शक्ति को पहचान लिया। उन्होंने शासकों और मजिस्ट्रेटों के सामने अपनी बुद्धि के अनुयायियों से बात करने का वादा सुना। क्या वो अपनी शक्ति को अपने सांसारिक लाभ के लिए उद्धार नहीं देगा? एक साथी ने उनसे कहा, गुरु, मेरे भाई से बात करते हैं कि वो मेरे साथ विरासत को विभाजित करते हैं। मूसा के माध्यम से ईश्वर ने संपत्ति के प्रसारण के संबंध में दिशा निर्देश दिए थे। बड़े बेटे को पिता की संपत्ति का दुगना हिस्सा मिला, व्यवस्था विवरण 21 आयत 17, जबकि छोटे भाई एक जैसे थे। ये आदमी सोचता है कि उसके भाई ने उसे उसकी विरासत के लिए धोखा दिया है, अपने स्वयं के प्रयासों को सुरक्षित करने में विफल रहा है जो वो अपने नियम के रूप में मानता है, लेकिन अगर अंत में हस्तक्षेप करेगा तो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसने मसीह की सरगर्मी अपीलें सुनी है और उसके शास्त्रियों और फरीसियों की निंदा की। अगर इस तरह के आदेश के शब्दों को इस बात से की जा सकती है तो वो दुखी आदमी को उसके हिस्से से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेगा। मसीह द्वारा दिए गए एकमात्र निर्देश के बीच में इस व्यक्ति ने अपने स्वार्थपूर्ण स्वभाव का खुलासा किया था। वो प्रभु की उस क्षमता की सराहना कर सकता है जो अपने स्वयं के मामलों की उन्नति के लिए काम कर सकती, लेकिन आध्यात्मिक सच्चाइयों ने उसके दिलो दिमाग पर कोई पकड़ नहीं बनाई थी। उत्तराधिकार प्राप्त करना उनका शोषक विषय था। यीशु महिमा के राजा, जो अमीर थे, फिर भी हमारे गरीब होने के कारण उनके लिए दिव्य प्रेम का खजाना था। पवित्र आत्मा ने उनसे यह आग्रह किया था कि वे विरासत के उत्तराधिकारी बने जो अजय और अपरिभाषित है, ये कि दूर नहीं। पत्रस 1:4। उसने मसीह की शक्ति के प्रमाण देखे थे। अब महान शिक्षक से बात करने का मौका था, अपने दिल में इच्छा रखने वाले को ऊपर उठाने का, लेकिन बनियन के रूपक में रेक के साथ आदमी की तरह। उसकी आंखें पृथ्वी पर टिकी थीं। उसने अपने सिर के ऊपर मुकुट नहीं देखा। साइमन मैगस की तरह वो सांसारिक लाभ के साधन के रूप में ईश्वर के उपहार को महत्व देता था। पृथ्वी पर उद्धारकर्ता का मिशन तेजी से एक निकटता के लिए आकर्षित कर रहा था। अपनी कृपा के राज्य की स्थापना में जो कुछ भी वो करने आया था, उसे पूरा करने के लिए केवल कुछ महीने ही शेष थे। फिर भी मानव लालच ने भूमि के एक टुकड़े पर विवाद को उठाने के लिए उसे अपने काम से बदल दिया, लेकिन यीशु को अपने मिशन से अलग नहीं होना था। उनका जवाब था, किसने मुझे जज बनाया था और तुम्हारे ऊपर विभक्त किया? यीशु इस आदमी को सिर्फ वही बता सकते थे जो सही था। वो मामलों में सही जानता था, लेकिन भाई झगड़े में थे क्योंकि दोनों ही लोभी थे। मसीह ने वस्तुतः कहा, इस तरह के विवादों को निपटाना मेरा काम नहीं है। वो एक और उद्देश्य के लिए आया था, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, और इस तरह पुरुषों को शाश्वत वास्तविकताओं की भावना पैदा करने के लिए। इस मामले में मसीह के उपचार में उन सभी के लिए एक सबक है जो उनके नाम पर सेवक है। जब उन्होंने 12 को आगे भेजा तो उन्होंने कहा, चलते चलते प्रचार करो और कहो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं की जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तूने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। मत्ती 10 आयत 7-8। वे लोगों के लौकिक लोगों को बसाने के लिए नहीं थे, उनका काम पुरुषों को ईश्वर से सामंजस्य बनाने के लिए राजी करना था। इस काम में मानवता को आशीर्वाद देने के लिए अपनी शक्ति को रखो। पुरुषों के पापों और दुखों का एकमात्र उपाय मसीह है। उनकी कृपा की सुसमाचार ही समाज को अभिशाप देने वाली बुराइयों को ठीक कर सकता है। गरीबों के प्रति अमीरों का अन्याय, गरीबों के प्रति घृणा। अमीर एक जैसे स्वार्थ में अपनी जड़ रखते हैं, वो अकेले पाप के स्वार्थी दिल के लिए प्यार का नया दिल देता है। चलो, मसीह के सेवकों को आत्मा के साथ सुसमाचार प्रचार करते हैं। स्वर्ग से नीचे और पुरुषों के हित के लिए उन्होंने काम किया। जब इस तरह के परिणाम मानव जाति के आशीर्वाद और उत्थान में प्रकट होंगे, क्योंकि मानव शक्ति द्वारा पूरी तरह से असंभव है। हमारे मानव शक्ति द्वारा प्रश्नकर्ता और सभी समान विवादों को परेशान करने वाले चक्कर की जड़ पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, तो और लोभ का अनुभव करो, क्योंकि मनुष्य का जीवन उन वस्तुओं की बहुतायत में नहीं है जो उसके पास है। और वह उन्हें एक दृष्टांत देते हुए कहता है, एक निश्चित अमीर आदमी की जमीन बहुत खुशी से सामने आई और उसने खुद को सोचकर कहा, मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास अपना फल देने के लिए कोई जगह नहीं है। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपने खलिहान नीचे खींचूंगा और अधिक से अधिक निर्माण करूंगा। वहां मैं अपने सभी फलों और अपने सामानों को तैयार करूंगा और मैं अपनी आत्मा से कहूंगा, आत्मा, तू बहुत वर्षों से छाए गए सामनों को खा रहा है, खाओ पियो प्रफुल्लित रहें। लेकिन ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इस रात तुम्हारी आत्मा को तुम्हारी आवश्यकता होगी, तो ये चीजें किसी होगी जो तूने प्रदान की है, तो क्या वह अपने लिए खजाना बिछा रहा है? ईश्वर की ओर अमीर नहीं है। मूर्ख अमीर आदमी के दृष्टांत से मसीह ने उन लोगों को मूर्खता दिखाई जो दुनिया को अपना सब कुछ बनाते हैं। इस आदमी ने ईश्वर से सब कुछ प्राप्त किया था। सूरज को अपनी भूमि पर चमकने की अनुमति दी गई थी। इसकी किरणें सिर्फ और सिर्फ अन्याय पर पड़ती है। स्वर्ग की बौछार बुराई पर और अच्छे पर उतरती है। प्रभु ने वनस्पति की फलने फूलने के लिए खेतों को बहुतायत से लाने के लिए प्रेरित किया था। धनी व्यक्ति को अपनी उपज के साथ क्या करना चाहिए, इसके विषय में चिंता थी। उसके खलिहान जरूरत से अधिक भरे हुए थे और उनके पास अपनी फसल के अधिशेष को रखने के लिए क्यों कोई जगह नहीं थी। उसने ईश्वर के विषय में नहीं सोचा था, जिससे उसके सभी दयालु आ गए थे। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि ईश्वर ने उसे अपने सामनों को भंडार बना दिया है, जिससे वो जरूरतमंदों की मदद कर सकें। उनके पास ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने का एक धन्य अवसर था, लेकिन केवल अपने आराम के सेवक बनने के बारे में सोचा। गरीब, अनाथ, विधवा, पीड़ित की स्थिति को इस अमीर आदमी के कान में लाया गया था। ऐसे कई स्थान थे जिनमें अपना माल जमा करना था। वो आसानी से अपने बहुतायत के एक हिस्से से छुटकारा पा सकता था और कई जो भूखे थे उन्हें खिलाया जाएगा। कई नग्न कपड़े पहने हुए, कई दिल खुश हो गए, रोटी और कपड़े के लिए कई प्रार्थनाओं का जवाब दिया और स्तुति का माधुर्य स्वर्ग तक चढ़ गया होगा। प्रभु ने जरूरतमंदों की प्रार्थना सुनी थी और उनकी भलाई के लिए उन्होंने गरीबों के लिए तैयार किया था। भजन संहिता 68:10। कई लोगों की इच्छाओं के प्रचुर प्रावधान अमीर आदमी को शुभकामनाओं देने वाले आशीर्वाद में किए गए थे, लेकिन अपने दिल को जरूरतमंदों के रोने के लिए बंद कर दिया और नौकरों से कहा, ये मैं करूंगा, मैं अपने खलिहान नीचे गिराऊंगा और अधिक से अधिक निर्माण करूंगा, और मैं अपने सभी फलों और माल को सर्वश्रेष्ठ करूंगा, और मैं कहूंगा, मेरी आत्मा, आत्मा, तूने बहुत वर्षों तक माल जमा किया है, सकून ले, खा पी और मस्त रह। इस आदमी का उद्देश्य उन जानवरों की तुलना में अधिक नहीं था जो नाश होते हैं। वो ऐसे रहता था जैसे कोई ईश्वर, कोई स्वर्ग, कोई भावी जीवन न हो, जैसे कि उसके पास जो कुछ भी था वो उसका अपना था और वो ईश्वर या मनुष्य के लिए कुछ नहीं चाहता था। भजनहार ने इस अमीर आदमी का वर्णन किया जब उसने लिखा, मूर्ख ने अपने दिल में कहा, कोई ईश्वर नहीं है। भजन संहिता 14:1। इस आदमी ने स्वयं के जीवन यापन किया। वो देखता है कि भविष्य बहुतायत से प्रदान किया जाता है और उसके लिए और अब और कुछ नहीं है, लेकिन अपने मजदूरों के फलों का खजाना और आनंद लेने के लिए। वो खुद को अन्य पुरुषों से ऊपर का पक्षघर मानता है और अपने साथी शहरवासियों द्वारा अच्छे निर्णय और समृद्ध नागरिकों के रूप में सम्मानित किया जाता है। जब तुम अपने आप को अच्छा करोगे तो पुरुष तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। भजन संहिता 49:18। लेकिन इस संसार की बुद्धिमानता ईश्वर के साथ मूर्खता है। पहला कुरंथियों 3:10। जबकि धनी व्यक्ति वर्षों तक भोग के लिए तत्पर रहता है, प्रभु अलग अलग योजनाओं की खोज कर रहा है। इस निराले भंडार पर संदेश आता है, तुम मूर्ख हो, रात को तुम्हारी आत्मा तुमसे ले ली जाएगी। यह एक मांग है कि धन की आपूर्ति नहीं हो सकती है। जिस छैना की उसने कुर्बानी की है उसकी प्रतिपूर्ति खरीद सकते हैं। एक पल में जिसे वो अपने पूरे जीवन में सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है वो बेकार हो जाता है। वे कौन सी वस्तुएं हैं जो आपने प्रदान की हैं? उसके विस्तृत क्षेत्र और अच्छी तरह से भरे हुए भंडार उसके नियंत्रण में से गुजरते हैं। वो धन का ढेर लगाता है और ये नहीं जानता कि कौन उन्हें इकट्ठा करेगा। भजन संहिता 39:6। केवल एक चीज जो उसके लिए महत्वपूर्ण होगी वो अब सुरक्षित नहीं है। स्वयं के लिए जीने में उन्होंने उस दिव्य प्रेम को अस्वीकार कर दिया है जो उनके साथी पुरुषों के लिए दया में बह गया होगा। इस प्रकार उसने जीवन को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम ही जीवन है। इस आदमी ने संसार को आध्यात्मिक के बजाय शारीरिक की ओर दिया है। आदमी जो सम्मान में है और समझ नहीं है कि जानवरों की तरह जो नाश हो जाता है। भजन संहिता 49:20। तो क्या वह उसके लिए खजाने का खजाना है और ईश्वर के प्रति समृद्ध नहीं है? तस्वीर हर समय के लिए सच है। आप केवल अच्छे स्वार्थी के लिए योजना बना सकते हैं। आप एक साथ खजाना इकट्ठा कर सकते हैं। आप शानदार और उच्च निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि प्राचीन बेबीलोन के बिल्डरों ने किया था। लेकिन आप दीवार को इतना ऊंचा या फाटक नहीं बना सकते जितना कि कयामत के दूतों को बंद करना। बेलशाजर राजा ने अपने महल में दावत दी और सोने और चांदी के देवताओं की, पीतल, लोहे और पत्थर। लेकिन एक अदृश्य हाथ उसकी दीवारों पर कयामत के शब्दों में लिखा था। इस महल के द्वारा शत्रुतापूर्ण सेनाओं के चलने की आवाज सुनी गई उस रात। बेलशाजर चालदियों के राजा मारे गए और एक विदेशी सम्राट सिंहासन पर बैठा। दानियेल 5:50। स्वयं के लिए जीना नाश होना है। लोभ स्वयं के लिए लाभ की इच्छा आत्मा को जीवन से काट देती है। यह शैतान की आत्मा है कि वह स्वयं को आकर्षित करे। यह मसीह की आत्मा है कि वह दूसरों की भलाई के लिए स्वयं का बलिदान दे। और गवाही यह है कि ईश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। वह पुत्र को जीवित करता है और वह जो ईश्वर का पुत्र नहीं है वह जीवन नहीं है। यूहन्ना 5:11-12। जहां वह कहता है, लो और लोभ से सावधान है, क्योंकि अमन के जीवन में उन चीजों को बहुतायत नहीं है जो उसके पास था।